نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آیت نمبر 62 سے 71 آج ہمارا گول ہے ایک آدھ بات پچھلے سبق میں سے جو کل ہم نے پڑھا کر کے انشاءاللہ ہم آج کی تفسیر پہ آئیں گے پیچھے بات ہوئی تھی من اور سلوہ کی اور ان کے ناشکری کے رویے کی تھی تو اس میں ایک آدھ چیز اگر آپ آیت کے اوپر نظر جمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نظر اس پہ آئے گی پہلی بات ہے کہ جب انہوں نے مانگا تو بہت کچھ مانگا نا مثلاً بقلیہا و قصہ ایہا و فومیہا و عدسیہا رائٹ چار چیزیں تو ہیں نا اور بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ زیادہ گنیں گے لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا اب آپ جب تک آیت پہ نظر نہیں ڈالیں گے نا میری یہ بات بالکل نہیں سمجھ آئے گی اور آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہیں انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کو مانگا تھا من سلوہ یعنی من اور سلوہ کتنی چیزیں تھیں دو انہوں نے کیا مانگا بقل قصہ فوم عدس اور بصل پانچ چیزیں مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تبصرہ دیکھیے گا قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر کیا تم طلب کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے جو اعلیٰ ہے اگر آپ لفظ دیکھیں نا تو الذی ہائی لائٹ کریں پھر ہوا دیکھیے پھر آگے پھر ہوا پھر دوبارہ باللذی واحد ہے سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو پانچ چیزیں مانگی تھیں ان کو چار ملی ہوئی تھیں ان کو دو ملی ہوئی تھیں تو پھر یہاں واحد کا صیغہ کیوں آیا ہے یعنی اگر آپ کے لیے آسان کر دوں تو یہاں ٹیکسٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بس ایک اعلیٰ چیز اللہ نے ان کو دی تھی اور اس کے بدلے میں انہوں نے ایک ادنا چیز مانگی اتنی بات سمجھ آ گئی ہے ایک مانگی تھی لیکن اگر چیزوں میں کھوئے تو بہت ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہوا بیچاروں نے ککڑی اور ساگ ہی مانگا تھا نا کوئی شراب تھوڑی پی تھی یا کچھ اور تو نہیں مانگا تو یہاں اتستبدلون الذی سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں اس کو بڑا بڑا کر کے لکھ لیں اللہ تعالیٰ کا یہ غصہ یا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر یہ اینگر ان چیزوں کے مانگنے پہ نہیں تو سوال لکھیے کہ پھر یہاں الذی سے کیا مراد ہے کیا گھٹیا لیا اور کیا آلہ چھوڑا تو یہاں ادنا ہے غلامی اور آلہ ہے آزادی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے ان کو آزاد کیا اور ان کو کہا کہ اب تم آزادی سے کھاؤ پیو امیجینیشن میں لائیے کہ جیل میں کچھ لوگ ہوں ساتھ رہتے تھے اب جیل میں بیٹھ کے ملتا ہے محنت نہ بھی کرو تو تین وقت کا کھانا یا دو کا وقت کھانا تو آتا ہی ہوگا نا اب وہ قیدی جب جیل سے رہا ہو جائیں اور کسی ایک دن آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے کہیں یار وہ کیا دن تھے کتنا مزہ آتا تھا کھانے کے وقت پہ ٹیبل آ جاتی تھی یا ٹرے سجی بھی آتی تھی تو کوئی کہے گا نا کہ ان کو جیل کے کھانے اپنی اس آزادی سے زیادہ عزیز ہیں جو کہ اللہ نے ان کو دی سمجھ آ گئی بالکل یہاں یہی بات سمجھ آتی ہے اصل میں اللہ ان کو اپنا غلام بنانا چاہتا تھا آزادی دینا چاہتا تھا انہوں نے غلامی کو مانگا کیونکہ غلامی میں محنت نہیں کرنی پڑتی نا دوسری بات اگر آپ دیکھیں نا تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بھی قابل غور ہے قال اتستبدلون یعنی تین باتیں کہہ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آر دلایا ہے پہلا کہ موسیٰ کا جملہ اتستبدلون الذی ہوا ادنا اب کل کوئی آپ سے پوچھے اور میں ضرور چاہوں گی کہ اسائنمنٹ میں یہ سوال پوچھیں کہ یہاں اعلیٰ کے بدلے ادنا کیا تھا تو اگر آپ نے یہ لکھا نا کہ وہ کھجور ککڑی اور وہ من سلوا تھا تو آپ کا جواب درست نہیں ہوگا غلامی اور آزادی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی غلامی ہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کو باقی سب کا غلام بننے سے روکتی ہے جو اللہ کا غلام نہیں رہتا نا پھر وہ نفس کا غلام ہوگا وہ ٹرینڈز کا غلام ہوگا وہ معاشرے کا غلام ہوگا وہ مال کا غلام ہوگا پیسے کا غلام ہوگا وہ لوگوں کی خوشی کا ہر وقت فکر مند ہوگا لوگ مجھ سے خوش ہیں میرے دوست میرے سے خوش ہیں میرے گھر والے مجھ سے خوش ہیں حالانکہ اللہ کا غلام ہر طرح کی غلامی سے آزادی پاتا ہے کیا کہتے ہیں آزادی میں حریت ہے اور اصل خوشی جس کو دنیا اس وقت ڈھونڈ رہی ہے نا وہ اللہ کا غلام بننے میں جو آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی آزاد قومیں غلام کیسے بنتی ہیں یہ اس کا نسخہ ہے آپ اس پورے سبق کے اوپر ایک کمنٹ دینا چاہے نا تو آزاد قومیں غلام کب بنتی ہیں جب نفس کی غلامی کا ذریعہ بنتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تو یہ آر دلائی کہ اعلیٰ چھوڑتے اور ادنا لیتے ہو دوسرا دیکھیے احبطوا مصرا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ تھی نکلو پھر کسی شہر میں यानी जाओ फिर जिहाद करो और बैतुल मकदस में चले जाओ, एक मानी ये। दूसरा, जैसे पीछे भी मैंने तذکرہ किया कि अरबी जबान में शहर के लिए बहुत सारे लफ्ज है, करिया है, मदीना है, बलद है, लेकिन मिस्र कहकर इनको वो पुराना मिस्र याद कराया गया कि शर्म नहीं आती तुम्हें, कैसी बातें करते हो, जाओ फिर मिस्र वाला गुलामी वाला माहौल मांगो और तुम्हें अल्लाह ताला वहां ये दौलतें दे देगा। तीसरी चीज देखिए मूसा के जुमले में, फाइन नलकुम मा साल, तो जो तुमने मांगा तुमको मिल गया। क्या मांगा तुमने? जो तुमने यहां बाजार, क्या लग रहा है, फिर वही बात होगी यहाँ कि बाजार लग रहा है कि उन्होंने बकल और किस्सा और फूम और अदस और बसल मांगा था, तो वो तो कोई नहीं मिला। अगर आप तारीख खोल के देख ले तो क्या सहराए सीना में ये सारी चीजें थी, ये कब मिला, ये बड़ी गौर से सुनेंगे समझेंगे तो समझ आएगी, वरना नहीं आएगी। आप लोग नोट्स नहीं लेते, मैं बहुत परेशान हूं आप में से काफी लोगों को देखती हूँ। इवन रूट वर्ड्स और वो जो लफ्जी वजाहत हो रही होती है आपके कलम नीचे पड़े होते हैं, मेरा तो दिमाग इतना नहीं है कि मैं बगैर लिखे या बगैर सोचे इनको पहली दफा मान जाओ। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा अगला जो रुकू आज पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल लफ्ज है, ये जुबानी रटे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने लिखे थे। तो आप लोग लिखा करें, आप लिखेंगे तो आप देखेंगे लिखने की आदत होगी, सिर्फ सुनेंगे तो सुनने की आदत होगी, वरना फिर मैं बहुत लिटरल बोलूंगी आपसे, फिर मैं ये बारीकियां छोड़ दूंगी क्योंकि ये जुबानी सुनने से याद नहीं रहती, और आगे कोट भी करेंगे तो आधी पाधी करेंगे ना, तो वो मजा नहीं आएगा। तो लिहाजा यहां नोट करें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फाइन नलकु मा साल तुम कहकर क्या बताया, कि तुम गुलाम थे, गुलाम ही रहोगे। असल बात यह है कि तुम्हें नहीं जरूरत इन चीजों की तो तुम ना ले लो। आगे अल्लाह सुबहान तआला का तबसर, व दुरिबत अलैहिम जिल्लत वल मस्कना, उन पर जिल्लत और मस्कीनी मार दी गई। ये क्या है, यानी आजाद कौमें गुलाम कब बनती हैं, जब वो नफ्स परस्त हो जाती हैं, ख्वाहिश परस्त हो जाती हैं, और जिल्लत की बात कर दी। अगर आप देखें तो मिस्र में क्या थे, ये गुलाम थे, राइट। गुलामी में अमूमन इंसानों को क्या करना पड़ता है, इमेजिनेशन में लाएं, क्योंकि आजकल गुलामी नहीं है ना तो हम इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर पाते, लेकिन तसव्वुर में लाएं, कुछ ना कुछ तो सुना होगा। नंबर एक आता है कि गुलाम को अपने मालिक को आका बनाना पड़ता है, और हमारा आका कौन है, आका है हकीकी, तो अल्लाह के मां सिवा को अल्लाह की तरह पूजना पड़ता है। दूसरा, गुलामी का एक नुकसान होता है, प्रमोशन के चांसेस नहीं होते। आप देखिए कि गुलाम का बेटा गुलाम, लौंडी का बेटा गुलाम होगा या उसकी बेटी लौंडी होगी। दुनिया में हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने से बेहतर करें। आप देखिए वो माँ बाप जिनको उर्दू इंग्लिश नौश लिखनी पढ़नी नहीं आती होगी, वो इतनी कुर्बानियां देकर सुबह सुबह उठ के, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है जो हम अपने इस मकसद के साथ सच्चाई की देते हैं कि हम सुबह सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, फिर पैसा लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। क्यों? हर एक चाहता है कि हमारे बच्चे तरक्की करें, और हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले, और हर सच्चे उस्ताद की भी ये ख्वाहिश होती है कि उसके शागिर्द उससे आगे निकले। गुलाम रहते हुए ऐसी प्रमोशन के कोई चांसेस ही नहीं होते, यहाँ लोग रुक जाते हैं। मिस्र में फिरौनियों के चुंगल में रहने की वजह से बनी इसराइली किस बात पे मजबूर थे? नंबर एक, फिरौन को खुदा कहते थे, अना रब्बुकुम अलआला, वो पहनाता था। वो आपने मशहूर वाक्य सुना होगा कि फिरौन की बेटी की जो कंघी करने वाली थी, माचता बोलते हैं उसको, तो उसकी कंघी गिरी और उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो ये बात फिरौन को उसने बता दी, तो फिर फिरौन ने उससे बाद में जाकर बदला लिया। सुना वे वाक्या, कैसे फिर उस औरत के बच्चे एक एक करके उसने तेल में डाले तो बच्चों में से एक बच्चा बोल उठा। कहने का मतलब ये कि फिरौन को खुदा कहना ही पड़ता था, चाहे आप बंदे मातरम कह दें, चाहे आप जिंदाबाद का नारा लगाएं, लेकिन जब कौमें गुलाम बनती है तो उनको दूसरों को खुदा कहना ही पड़ता है। दूसरी बात आप देखिए कि बनी इसराइल कई सालों से, सदियों से फिरौनियों में थे, उनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई। जैसे आप इंडो पाक को इकट्ठा रखें तो क्या मारूफ है, तकसीम से पहले पाकिस्तान और इंडिया के बनने से पहले क्या मशहूर था, कि मुसलमानों को छोटी जॉब्स मिलती थी, बड़ी जॉब्स नहीं उनको मिलती, उनको सियासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन गुलामी में ये चीज़ हो जाती है। तीसरी चीज देखिए कि मिस्री क्या करते थे, युज़ब्बिहूना बनाकुम और यस्तहयूना निसाकुम, ये क्या थी मस्कनत। अगर आप देखें अल्लाह के मां सिवा को, यानी फिरौन को पूजना, उन पर जिल्लत थी। प्रमोशन का ना होना ये मस्कनत है। पीछे बताया आपको कि मस्कन में दो चीजें हैं, मसका और सकना। मस्कीन किसको कहते हैं, हमारे यहां जिंद में आता है ना, जिसके पास माल नहीं, पैसे नहीं है। हालांकि मिस्कीन वो होता है जो अपनी हालत ना बदल सके, जो बेचारा जिस हाल में पड़ा वहीं रहे, तरक्की नहीं कर सकता। और युज़ब्बिहूना अबनाकुम से देख लीजिए तो दुरिबत अलैहिम अज़िल्ल वल मस्कना, अल्लाह ने इस मुसलमान कौम को इन मुसीबतों से निकाला था, लेकिन उनको ये रास नहीं आई। क्या हमें भी निकाला? 1947 को क्या हुआ? हमें भी तो अल्लाह ने इन सारी जुरीबत जिल्लत और मस्कनों से निकाला, लेकिन आज मुसलमानों का हाल क्या दिखता है? बबाउ बिगदब मिन अल्लाह। ये जो बा का लफ्ज़ है ना, बव्वा से है। कुरान पाक में आगे आएगा, हजरत इब्राहिम के खानदान के बारे में आता है कि हमने उनको एक जगह दी। अरब लोग कहते हैं बाल इमरा, औरत से शादी करना, इसी तरह बीवी के साथ सेटल होने को भी बहू कहते हैं। मुराद क्या है कि अल्लाह ताला पलट आए, यानी उनके ऊपर चिपक गए भी गदब मिन अल्लाह, अल्लाह के गजब, अल्लाह के गुस्से। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का गजब गुस्सा क्या ये दुनिया की चीजें मांगने से था? नहीं। अब देखिए आखिर में वो सारे पॉइंट जमा हो रहे हैं जो पीछे कितनी आयतों से हम पढ़ते आ रहे हैं। जुर्म क्या था? अब आपसे कोई पूछ सकता है कल सवाल, ये सारे सवाल बन सकते हैं कि बनी इसराइल पे गजब क्यों टूटे, या बाओ भी गदब मिन अल्लाह क्यों हुआ? तो नंबर एक वजह, कानू यकफुरुना भी आयत अल्लाह, वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। देखिए अल्लाह सुबहाना तला की आयतें जो है ना, निशानियाँ, ये दो तरह की होती हैं। एक वो है जो मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी कुरान पाक में से पढ़ रहे हैं। इन आयतों को अगर हम यहाँ मानी में लेंगे ना, तो यहाँ कुफर से मानी इनकार है, जो मैं और आप देखते हैं अमली तौर पर या कौली तौर पर लोग इनकार कर देते हैं। लेकिन आयतें निशानियाँ कायनात की भी होती हैं, इन नफी खल्क समावाती वल अर्द। तो फिर अगर इधर अल्लाह की आयतें मुराद लिया जाए, क्योंकि बनी इसराइल पे अल्लाह ने बहुत नेमतें की थी, मनोसलवा का उतरना या बादलों का साया, ये भी तो एक आयत ही थी ना, तो फिर यहां कुफर से मुराद नशुक्री होगी। मैं दोहराती हूं अपनी बात को, कुफर दो तरह से होता है, या नशुक्री के मानों में या इनकार के मानों में। कुरान की आयतें या वहां तौरात की आयतें मुराद ले लें आप, या पिछले अंबिया के सहीफे मुराद लें, तो मुराद ये था कि इनकार करते थे। और अगर निशानियां या जो अल्लाह ताला ने उनको चीजें दी थी वो सामने रखेंगे, तो इससे मुराद कुफराने नेमत है। पहला जुर्म, अल्लाह की आयतों को नहीं समझते, कायनात को नहीं समझते, शौक ही नहीं है कायनात को देखने का। अपनी बनाई हुई दुनिया की आर्टिफिशियल चीजें ही इतनी हैं, और अपने मसले मसाइल और अपने इर्द गिर्द इतनी आर्टिफिशियल जिंदगी बसर की हुई है, परवाही कोई नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। भारी पर्दे तान के लोग बैठे रहते हैं और बाहर फिजा की मस्तियां और पत्तों का झूमना और हवाओं का चलना नहीं देखते। अंदर फुल एसी चला लेंगे, बाहर की हवा नहीं देखेंगे, अंदर हीट चला लेंगे, सूरज के नीचे नहीं बैठेंगे। ये है कानू यकफुरू नबी आयतिल्ला। और दूसरा जुर्म, व यकतुलून नबी नबी गैर हक, ये नबियों को ना हक कत्ल करते थे, अंबिया अलैहिस्सलाम का कत्ल। अब आप देखिए कि कत्ल कितनी बड़ी चीज है, जैसे आपको पीछे भी बताया कि एक शख्स का कत्ल इंसान के लिए कितना बड़ा गुना होता है। लेकिन यहां लफ्ज नोट कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है इसके बीच में छुपी भी, यक्तुलून। बात किन की हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बनी इसराइलों को उनके बापदाता का सुनाया जा रहा है, लेकिन यहां तो यक्तुलून है, मजारे का सीगा है, या हाजिर के लिए या मुस्तकबिल के लिए। चलो उर्दू में बता देती हूँ कि यहाँ तर्जमा क्या बन रहा है, वो अभी भी कत्ल करते हैं नबियों को या कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें क्या चाहिए था, उन्होंने कत्ल किया, कतलू नबीयीन। तो यक्तुलून से मुराद वो सारी साजिशें हैं जो मदीना के यहूद अभी तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुनिया में सबसे ज्यादा कातिलाना हमले हुए। यहूद ने अल्लाह के नबी को कत्ल करने की कोशिशें की, एक औरत ने आपको जहर वाला खाना चखाया, उसी की वजह से बाद में आपकी डेथ भी हुई। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम के ऊपर एक पत्थर गिराने की कोशिश की गई, तो पता क्या चला कि कल भी करते थे और आज भी करते हैं, अभी भी इनके दिल के पोल है। ये नबी सल्लम को दिखाया जा रहा है ना कि ये सब कुछ मौजूद है, ऐसी चीजें आज भी अपने इस कत्ल पे वो शर्मिंदा नहीं है। आप अगर इनकी किताब देखें तो इनकी किताबों में, यानी मैं हवाले ना भी दूँ ना, तो खुद आज की तौरात जो कि बहुत ज़्यादा चेंज्ड भी हो चुकी है, इन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिश की, और इसी तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का कौल है कि नबियों को कत्ल तलवार से इन्होंने किया, फिर इस तरह मिकाया एक नबी थे उनको कत्ल किया, फिर इसी तरह से हजरत यहया ने जब इनकी बद अखलाकियों पे तनकीद की तो इन्होंने उस पे उनको कत्ल किया, हजरत ईसा के कत्ल की कोशिश की, आमूस नामी एक नबी के बारे में आता है। ये सब रेफरेंसेस अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरे कोटेशंस के साथ दे सकती हूँ। क्या सवाल पैदा होता है कि आज उम्मत मुस्लिमा में भी कत्ल है? अंबिया तो आज नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। ये सही हदीस है, मतलब यह है कि जैसे बनी इसराइल के नबियों ने भी पिछली किताबों ही की तरवीज की थी, अपनी कोई नई किताब उन पर नहीं उतरी थी, इसी तरह उम्मते मुस्लिमा के जो दीनदार हैं वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लाए हुए दीन की करते हैं। आज आप देखिए कि मुसलमानों को कहाँ कहाँ नहीं मारा जा रहा। जो जुबान हक बोलती है ना उसके पीछे इंटेलिजेंसिस लग जाती हैं। इसकी एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, आज भी तो यही समझ आ रहा है। तो क्या पता चला कि अल्लाह का गजब दो गुना हो गए, पहला आयतों का इनकार, दूसरा आयत नबियों का कत्ल, तीसरा देखिए बगैर हक, और हक भी कोई नहीं था, यानी वजह के बगैर या बिल्कुल गलत मीनिंग से एज्यूम कर लेते हैं कि जो हक बोलता है ना वो हमारे खिलाफ ही होगा। एजम्पशन है, यकीन करें नाम लेने को दिल नहीं करता। इतने अच्छे इंग्लिश स्पीकर, इतनी उनकी एल्बम्स और इतना उनका सॉफ्ट, और मैं तो हमेशा उनके बारे में यही सोचती थी वो स्टोरीज बताते हैं, जस्ट उनकी सीरीज ही सारी स्टोरीज हैं, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट, स्टोरीज ऑफ सहाबा और दिस एंड दैट। तो उनको किस तरह से मारा गया आज उसका नाम निशान भी बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्लोज सर्किट के लोग हैं वो सारी कहानियां जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसने हक बोला बगैर हक, हक नहीं सुनना चाहते। कुरान में आप पढ़ेंगे अक्सर जब वो हक से नाबलद है, हक लोगों को अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, तो जिसने भी सच कहा कहते हैं इसको रास्ते से हटा दो, ना ये बात करे ना कुछ। तीसरा जुर्म इनका देखिए जालिका बीमा असव, ये है असल में आखिरी चोट इनके ऊपर कि ये सारा कुछ, यानी ये मत कहना कि इतनी छोटी सी बात पे अल्लाह ने पकड़ा, बल्कि इनका नाफरमानी, पैगंबरों का कत्ल और आयतों का इनकार करना, ये सब कुछ क्या था, ये नाफरमान बनना चाहते थे। देखिए इंसान का नफ्स जो है ना ये बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, उसको हर वो बंदा बुरा लगता है जो उसके रास्ते में रुकावट बने। आप अच्छे थे ना, आपको अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते होंगे, कब, जब वो आपको कहते थे नाखून काटे, चलो नहाओ, चलो बाल कटवाओ, चलो ये रोटी साले नहीं खाना है, बुरे लगते हैं। हालांकि माँ बाप हमारे मुखलिस होते हैं, जरा सा बड़े हो जाएं तो टीचर, अगर टीचर वाकई टीचर हो, तो आजकल के टीचरों की मैं बात नहीं करती, लेकिन टीचर हो और वो अगर आप पे जरा सी तनकीद करे आपको बुरा लगेगा, क्यों, कि ये इनको क्या हक है, ये क्यों ये हक लेते हैं। हमारा लेना देना अलग बात है, लेकिन ये हक मौजूद है, जो आपको कुछ देता है वो ले भी सकता है। माँ बाप प्यार देते हैं तो वो आपसे प्यार ले भी सकते हैं, आप इतना मान लगाते हैं तो वो बच्चे को नहीं पूछ सकते कि बताओ तुम क्या कर रहे हो। तो लोगों को हर दौर में, फिर इसी तरह देखिए बीवियां अमूमन शौहरों के खिलाफ कब होती हैं, जब शौहर समझदार हों और रोक टोक करें, बीवियों के ऊपर थोड़ी सी तनकीद करें, बेगम जरा पैसा सोच के इस्तेमाल किया करें, कम खर्चा करें, अच्छा घर में रहा करें, फोन कम इस्तेमाल करें, दिस एंड दैट। लेकिन इस बात की सबसे खूबसूरत तस्वीर नबियों की सूरत में होती थी, वो बुराई देख के बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो टोकना ही था, उनका तो काम था, तो ये कहते थे इनको खत्म कर दो। चौथा जुर्म देखिए वकानु या तदून, और ये हदों से आगे बढ़ जाते थे। एतदा का लफ्ज आया, देखिए अरबी जुबान में अदूब लफ्ज है ना, दुश्मन को कहते हैं, भागने को कहते हैं, असल में दुश्मन वो होता है जिससे इंसान भागता है। यहां क्या बात आ गई, एतदा, हदों को पार करना, गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। आप नीचे गाड़ी खड़ी करके अगर आती है ना, तो मेरा ख्याल है आप जरूर एक आध दफा शीशे में देखती होंगी कि वो जो नीचे लाइन लगी उसके ऊपर तो नहीं पाँव आ गया। बाज दफा उस पर ना भी हो ना टेढ़ी हो तो कहते नहीं टिकट मिल जाएगा, सीधे ही रखो, क्योंकि साथ वाली गाड़ी वाले को दरवाजा खोलने में मुश्किल होगी, है ना, ये सारी बातें सुनी हुई। तो जब अल्लाह के दीन के मामले में एक इंसान इस तरह के हालात करे तो उसको क्या कहेंगे, एतदा। इस्लाम का मिजाज क्या है, ला तकरबु जिना, जिना के करीब ही ना जाओ, इसी तरह से दिल का हदूदुल्लाही। तो सारी बातों में से जो बात मुझे समझ आई, जिस पे इस सारे सबक को क्लोज करूंगी, कि नफ्स परस्त लोगों को कभी भी अल्लाह का दीन, अल्लाह के दीन वाले, अल्लाह की किताबें अच्छी नहीं लगती। वजह क्या है, एतदा, यानी वो सरकशी करना चाहते हैं, वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यही बातें करके अल्लाह ताला ने हमारा दिल खोल दिया कि अपने आप को हम चेक करें। आज हम मुसलमानों के लिए यकीन करें ये एक लम्हा फिक्री है, अगर आप और मैं इर्द गिर्द देखें तो हमें कुछ भी बातें मुख्तलिफ नहीं दिखेंगी बाकी चीज़ों से। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।